काफिया शाह हुसैन, पृष्ठ 111, 84, राग सूही। थोड़ी रही गईयों रात्री, सहु सावियों नाहीं, धन से ही सुहागड़ी जिन पिया गली बाहें। एक रहाओ एक अनेरी कोठड़ी, दुआ दीवाना बाती, बाहों पकड़ी जमु ले चले कोई संगीना साथी। एक सुती रही कुल खड़ी, जागी वड़ भागी, जागनी की विधि से लह जिस अंतर लागी। दो कहे हुसैन सहेलियों, सहु कित विधि पइयों, करी साहिब दी बंदगी रैणी जागृत रहियों। तीन रात्रि अर्थात रात, रवियों अर्थात प्यार करना, जमु अर्थात मौत का फरिश्ता या यमराज, वट भागी अर्थात भाग्यवान, रैणी अर्थात रात। व्याख्या, अब रात बहुत थोड़ी रह गई है लेकिन मैंने यहाँ कुछ भी नहीं किया, अर्थात यह जीवन अब समाप्ति पर है लेकिन मुझे अपने प्रीतम का प्यार नहीं मिला। सारा जीवन बिता दिया मगर अक्ल नहीं आई और प्रभु में ध्यान नहीं लगाया, इसी कारण मुझ पर प्रभु की कृपा दृष्टि नहीं हुई। वह स्त्रियाँ अर्थात जीवात्माएं ही सुहागिने कहलाती हैं जिनमें गले में प्रीतम की बाहें पड़ी हो, अर्थात जीवात्मा परमात्मा की सुहागन तभी बन सकती है जब वह प्रभु के रंग में रंगी होती है, तभी परमात्मा उनको अपने चरणों में स्थान देता है। रहाऊं एक उस मुझे अंधेरी कोठरी में समा जाना है जो कि कब्र है, उसमें कोई भी दियाबाती नहीं होती, उस अंधेरे में प्रभु का नाम ही रोशनी प्रदान करता है। अंधेरी कोठरी में जाने के लिए कोई तैयार नहीं होता मगर यमराज हाथ पकड़कर साथ ले जाता है और वहां अकेले ही जाना पड़ता है और रहना पड़ता है, वहां कोई भी संगी साथी नहीं जा सकता, सिर्फ प्रभु का नाम ही सहारा बनता है। एक इस नाम का हकदार वही स्त्री अर्थात जीवात्मा बनती है जो जागृत रहती है। वह पृष्ठ 112 दुनिया की चमक दमक में खो नहीं जाती, खोने से भाव ही सो जाने से है। जिसके अंतर मन में प्रभु की लौ लग जाती है वही लौ उसे जागृत रखती है। दो ऐसे हेलियों, शहु को पाने इतना कठिन नहीं है इसलिए इसके लिए सिर्फ प्रभु की बंदगी करनी जरूरी है, इसके लिए रात को जागना चाहिए, रात से भाव आखिरी समय पर चेतन होना चाहिए, तभी प्रभु की निगाह अपने भक्तों पर पड़ेगी। 85 राग सूही, दर्द बिछोड़े दाहाल नीमे कैनु आखा, सूला मार दीवानी किति बिरहु पैया साड़े ख्याल ने, मैं कैनु आखा, सुला दी रोटी दुखा दलावर हड्डा दा बालड़ बालने, मैं कैनु आखा, जंगल जंगल फिरा ढूंढे दी अजी न आया माहिवाल ने, मैं कैनु आखा, रांझड़ रांझड़ फिरा ढूंढे दी रांझड़ मेरे नाल ने, मैं कैनु आखा, कहे हुसैन फकीर साईं दा वेक निमाड़िया दा हाल ने, मैं कैनु आखा। कैनु अर्थात किसकी, सूला अर्थात शूल, ख्याल अर्थात पीछे पड़ना, ढूंढेदी अर्थात ढूंढती, लावड़ अर्थात सब्जी। व्याख्या, अपने प्रीतम से बिछुड़ जाने की व्यथा में किसे सुनाऊं, किसे बताऊं, उससे बिछुड़ जाने का गम शूल चुभने समान है मगर उसकी बिरहा अब मेरा पीछा नहीं छोड़ती, असल में मैं उसके गम में इतना डूब जाना चाहती हूँ कि और किसी का ख्याल ही मुझे न आए। अपने प्रीतम को पाने के लिए मैं स्वयं को शारीरिक कष्ट भी देने को तैयार हूँ जैसा कि अक्सर लोग कहते हैं, वह खुद को ज्यादा से ज्यादा कष्ट दें, अपने प्रीतम को पाने का प्रयास करते हैं। इस पंक्ति को इस तरह से भी देखा जा सकता है कि प्रीतम के वियोग में कोई भी शारीरिक सुख सुहाता नहीं। यूं लगता है जैसे इस संसार में शूलों पर बैठकर जीवन जिया जा रहा है, मगर अपनी इस हालत के बारे में मैं किससे कहूँ। कई लोग परमात्मा को जंगलों में ढूंढते हैं। इसी विचार को बयान किया गया है कि खुद को अनेक शारीरिक कष्ट भी देकर देख लिया, परमात्मा को समाज और परिवार से दूर जा एकांत में जंगलों में भूखे प्यासे रह और भटक कर भी देख लिया, परंतु अभी तक रास्ता दिखाने वाला वह माहिवाल परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकी। परंतु इस सब के बारे में मैं कैसे कहूँ। पृष्ठ 113। इस पंक्ति में आकर बात बदल जाती है, क्योंकि इससे वह बताते हैं कि मैं जीवात्मा अपने रांझा अर्थात जीवात्मा को कहाँ कहाँ ढूंढती फिर रही हूँ, जबकि मुझे मालूम ही नहीं कि वह तो तेरे पास है। मेरे अंतर मन में बसा हुआ जिसे मैं अपने अंदर को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर ढूंढती रही। जब यह बात या भेद मुझे समझ में नहीं में ही आ गया है, मगर इस भेद को भी किसे जाकर बताऊं? क्या मेरी बात पर कोई यकीन करेगा? हुसैन उन लोगों पर तरस करता है जिन लोगों की इस बात की समझ ही नहीं आती कि परमात्मा उनके अपने अंतर्मन में ही बसा हुआ है। यह बात वह मूर्ख लोगों को कैसे समझाए या किससे जाकर कहे। इस काफी मैं कैनू आखा को बार बार दोहराया गया है, परंतु इसका अर्थ हर पंक्ति के साथ मिलकर बदल जाता है। कभी उसमें उदासी है, कभी बेचारगी, कभी तरस और कभी समझा न पाने की बेबसी व्यक्त की गई है। 86। राग कल्याण। देहु लत्था ही हरट न गेड़नी, एक रहाऊं सैया नली घर वंज सवेरे कूड़े गेडू ना गेड़ी नी, एक इकना भरिया एक भर गईया इतना नू भई अवेर ने, दो पिछो दी पछतासे कुणिये जदू पौसिया घुमड़ घेर ने, तीन कहे हुसैन फकीर साईदा इत्थे वती नहीं आवड़ा फेरी ने, चार दिहु अर्थात दिन लथा अर्थात खत्म हो गया वंज अर्थात जाना कुड़े अर्थात झूठे गेंडु अर्थात झगड़े अवेर अर्थात देर वती अर्थात फिर। व्याख्या दिन बीत गया है, अब हरट अर्थात पम को मत गेड़ो अर्थात चलाओ, अर्थात हरट से भाव प्रभु मार्ग पर चलने की तेजी दिखाने की ओर संगेत किया गया है। समय रहते जब जीवन था तब प्रभु के नाम या उसकी भक्ति की ओर ध्यान नहीं दिया, जब देखा कि बुढ़ापा आ गया है तो जोर जोर से उसके नाम का जाप करना आरंभ कर दिया। जैसे पानी न निकलने पर पंप को जोर से चलाया जाता है, शायद पानी तेजी से निकल आए, मगर इस प्रकार की कोशिश प्रभु भक्ति में करना संभव नहीं है। रहाओ एक, अब तो भलाई इसी में है कि अपने साई अर्थात गुरु के साथ घर वापस लौट जाओ, क्योंकि रात में अर्थात आखिरी समय किसी किया गया प्रयत्न बहुत ज्यादा सार्थक प्रतीत नहीं होता, परंतु इसके लिए बाकी लोगों या धर्मों को मानने वालों से झगड़ा या बहस पृष्ठ 114 करना ठीक नहीं। ये सभी झगड़े फालतू के और व्यर्थ के हैं। अपनी ना समझी का दोष दूसरे किसी को देना सर्वथा अनुचित है। अब शांति और समय से लेना चाहिए। एक, कुछ लोगों ने उस हरट से पानी भर लिया है, कुछ लोग भर रहे हैं और कुछ को काफी देर भी हो गई है, अर्थात प्रभु के नाम की कृपा रूपी अमृत से कई लोगों का मन ओतप्रोत हो गया है। कुछ लोग दीक्षा में रहे हैं, लेकिन काफी सारे लोग ऐसे भी हैं जिनका अभी भी इस ओर ध्यान नहीं गया। वह अपना कीमती समय गंवा रहे हैं। जब तक उन्हें इस बात की सुधि आएगी, हो सकता है तब तक काफी देर हो चुकी हो। शायद इस संसार में जाने का समय निकट आ रहा है। दो, उस समय वह लोग पछताएंगे जब इस भव सागर में पार करने में कठिनाई आएगी। उस समय इस बात की अहमियत याद आएगी कि उन्होंने जीवन के असल मकसद की अवहेलना की, और इसलिए आखिरी समय में कई प्रकार के दुख और संकट भोगने पड़ रहे हैं। तीन, यह पछतावा इसलिए भी बढ़ जाएगा क्योंकि फिर इस संसार में आना संभव नहीं। यह जीवन एक ही बार प्राप्त होता है। यदि इसमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं की, फिर यह दोबारा हासिल नहीं होता। इसलिए उचित यही है कि जो भी हो सके और जितना भी संभव हो सके, इसी जन्म में प्रभु को पाने का प्रयास करना चाहिए। चार, 87 राग खट। दिन चारी चौगान मैं खोल खड़ी, देखा कौन जीते बाजी कौन हारे, घोड़ा कौन का चाकी चालाकी चाले, देखा हाथी हिमती करे कौन डारे। एक रहाऊं इस जीव परी, बाजियां आन पड़ी, देखा गोई मैदान में कौन मारे। दो, हाय हाय जहानी पुकारता है, समग्री खेल बाजी शाह हुसैन प्यारे। तीन, चौगान अर्थात खेल, चाकी अर्थात घुड़सवार, डारे अर्थात हाथ डालना। व्याख्या, मैं कई दिनों से इस खेल को अर्थात जिसमें घुड़सवार खेलते हैं देख रही हूँ। देखना चाहती हूँ कि इस खेल को, इस बाजी को कौन जीतता और कौन हारता है। इसमें घुड़सवारों से भाव मनुष्यों से है। मन की तुलना घोड़ों से की जाती है क्योंकि वह सरपट भागता है, अर्थात मन के घोड़ों से मनुष्य किस प्रकार बाजी जीतता है। यहाँ बाजी जीतने को अनेक अर्थों में देखा जा सकता है। मन की लगाम को काबू, पृष्ठ 115, करने वाला भी जीतता है, और मन की दौड़ से तेज तेज दौड़कर दुनिया के सभी भौतिक सुखों के प्राप्ति करने वाला भी जीत का हकदार बनता है। परंतु अप्रत्यक्ष रूप से यह बाजी दुनियावी नहीं, आध्यात्मिकता की है, जिसे जीतना बेहतर है। घुड़सवार बहुत तेज और चालाक चाले चलता है, अर्थात मन को काबू करना अत्यंत कठिन होता है क्योंकि यह चंचल मन भटकाव के नए रास्ते खोज निकालता है। इस मामले में यह बहुत ही चालाक होता है। मन स्वयं ही घुड़सवार बन मनुष्य को अपने काबू में ले लेता है। अब देखना यह है कि इस बेलगाम घोड़े को नाल डालने की हिम्मत कौन करता है, अर्थात जो मनुष्य मन की चंचलता को जान, उसके स्वभाव के अग्रसर भाव को पहचान लेता है, वह इसके दबाव को परे हटाने की कोशिश करता है। वह इस घोड़े को काबू करने के लिए इसके दबाव में नहीं आता, बल्कि नाम ध्यान के बलबूते पर इसकी चंचलता और चालाकी को अपने दबाव में ले लेता है। एक रहाऊ इस खेल में मन को काबू कर बाजी जीतने वाला ही विजेता कहलाता है। इसे इस मैदान को मार लेने का हक प्राप्त होता है। दो, इस खेल को समझने की बात है, जो इस बाजी को सही ढंग से जीत लेता है वही परमात्मा को पाने का भी हकदार बनता है। असल बात इस बाजी को समझने की है। लोग इसके समझे बगैर ही हाय तौबा मचाने लगते हैं। तीन,